रंग से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ
ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा ने बहुत ऊंची बात कही है। बच्चे, मैं आकर के तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं। अब दिव्य दृष्टि के दो अर्थ होंगे। एक दिव्य दृष्टि है ज्ञान की दिव्य दृष्टि, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र देना ये भी जैसे दिव्य दृष्टि की तरह है, जिससे हम तीनों कालों को, तीनों लोकों को देख सकते हैं। और दूसरी दिव्य दृष्टि है साक्षात्कार की। तो वैसे तो कहेंगे कि साक्षात्कार से ही हम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हैं, लेकिन बाबा कहते जो दिव्य दृष्टि में ज्ञान की देता हूं, उससे भी तुम आत्मा परमात्मा को देख सकते हो। तो कैसे देख सकते हैं? जो बाबा कहते तुमको समझ आकर के देता हूं। तो ये ज्ञान का दर्पण एक दिव्य दृष्टि के रूप में है, जिससे हम आत्मा परमात्मा को देखते हैं। बाकी तो तीनों कालों, तीनों लोकों को भी देखते हैं। तो आज बाबा ने कितनी बार ये शब्द यूज किया है, दिव्य दृष्टि। उसमें दोनों बातें आ जाती है, साक्षात्कार भी और साथ साथ ज्ञान का तीसरा नेत्र भी। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा आचार 12/2025 है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है, है ना? सबके पास दिव्य दृष्टि। तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है, उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। यह है ज्ञान की दिव्य दृष्टि से आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? ड्रामा में क्या राज है कि ये सब बना बनाया ड्रामा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, तो हम किसी का पार्ट चेंज तो नहीं करेंगे, वो अपना अपना पार्ट बजाता है। तो इस ड्रामा के राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी कभी नहीं देंगे? उत्तर है, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वो कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे, क्योंकि अभी उसका पार्ट पूरा नहीं हुआ है ना भक्ति का। हम कैसे उनको कहेंगे भी भक्ति छोड़ो, तुमको तो ज्ञान मिला है? और कभी कहना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कभी ज्ञान को भी छोड़ा तो भक्ति भी छोड़ी, तो फिर कहाँ का नहीं रहा। इसीलिए अपने आप उसको जब समझ आ जाएगी तो अपने आप जो कुछ करना है वो करेगा। हम नहीं कहें कि भक्ति छोड़ो, वो कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेगा वो कि मैं आत्मा हूं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है, तो जब बेहद के बाप की पहचान उसको हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। ये जो भी कर्म कांड करते हैं, जो भी हद की बातें हैं, वो सब अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनको बेहद का ज्ञान मिल गया, बेहद बाप की पहचान मिल गई, खुद की पहचान मिल गई। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो, ये कौन पूछ सकता है? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं कि एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है, है वो भी रूह लेकिन वो सुप्रीम है, ऊंचे से ऊंची वो रूह है। सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परम आत्मा माना ही परमात्मा। ये भी समझाया गया है, मूंझना नहीं चाहिए कि हम किसको कहते हैं परम आत्मा परमात्मा। कोई कहते हैं परम आत्मा पर परमात्मा, तो ये भी समझाया गया है मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान तुमने सुना था। याद है ना 5000 वर्ष पहले, और उसका यादगार क्या है? गीता। तो ये 5000 साल पहले हमने ये ज्ञान सुना था। अब आत्मा ही सुनती है ना, आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतना है ना, कितनी आत्मा जो इन आंखों से देखी नहीं जा सकती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा, कोई नहीं होगा। देखने में आती है जरूर, परंतु दिव्य दृष्टि से। सो भी ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ही नहीं दिव्य दृष्टि अपने आप आ जाएगी और वो देख लेगा। ड्रामा में होगा तो वो दिव्य दृष्टि मिलेगी और वो आत्मा को देख सकेगा। सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। अच्छा समझो कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, मानो होता है, जैसे और चीज देखने में आती है वैसे ही देखेगा, वो दिव्य दृष्टि से देखेगा, लेकिन जैसे और कोई सितारा चमक रहा है देखना होता है वैसे वो भी देखेगा। तो बाबा कहते जैसे और चीज देखने में आती है। अब भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है, भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है, तो इन आंखों से ही वो दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। वो दिव्य दृष्टि से ही वो आत्मा को चैतन्य रूप में देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है, तब हम आत्माओं को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे तुम देख सकते हो। परंतु फिर ज्ञान चक्षु, हाँ एक तो समझ सकते ज्ञान चक्षु से, फिर दिव्य दृष्टि से बाबा कहते हैं, फिर ध्यान से देख सकते हो, हाँ ध्यान में जाकर देख सकते हो। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है, जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ। डांस करती थी, वैकुंठ में था, वैकुंठ तो था नहीं उस समय, 500-600 वर्ष ही हुआ होगा मीराबाई को, 550 वर्ष उसी प्रकार होगा, तो 500-600 वर्ष ही हुआ होगा मीराबाई को। उस समय वैकुंठ था थोड़े, जो पास्ट हो गया है वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं तब दीदार होता है। भक्तिमय माना इतनी नौधा भक्ति, इतनी अटूट भक्ति करते तब दीदार होता है, परंतु उनसे मुक्ति तो मिलती नहीं। चलो कितनी भी भक्ति करे कितनी भी मेहनत करे, पर बाबा कहते मुक्ति तो मिलती नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं, शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं छोटा भी रखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं जैसी आत्मा है वैसे परम पिता परमात्मा है। आत्मा भी ज्योति बिंदु, परम पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, दोनों एक जैसे है रूप में, साइज सबका एक ही है। जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्माएं सब भाई भाई है, आत्माएं इस शरीर में आती है पाठ बजाने, ये समझने की बातें हैं। ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है जो बाबा सुनाते हैं, ये भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। तो पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है, उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते जब तक वो खुद ना आए और आकर के अपना परिचय दे, तब तक बाबा कहते हैं कोई भी अच्छी रीति उनको समझ नहीं सकते हैं। अब वो क्या कह देते हैं दुनिया में, वो तो सर्वव्यापी है। अब ये कोई राइट तो नहीं है ना सर्वव्यापी कहना, ये भावनात्मक रीति से कोई कहते हैं वो और बात है, लेकिन सिद्धांत तो ये नहीं हो सकता है ना कि वो सर्वव्यापी, वो तो पिता है, एक है, वर्षा देता है, आता है। तो बाबा कहते हैं ये तो राइट नहीं है। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। मीरा ने तो यही कहा ना, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो भक्त ऐसे ही कहते हैं आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, मेरा तो आप दूसरा न कोई। तो जरूर उनको याद करना पड़े, केवल अगर वो एक ही मेरा है तो उनको ही याद करना पड़े। वो खुद भी कहते हैं हे बच्चों आप आत्माओं से ही बात करते हैं। बच्चों किसको कहते हैं बाबा, बात आत्माओं को कहते हैं, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब ये भी हिसाब बताया है बहुकाल कितना, 5000 साल हा? बहुकाल का भी हिसाब बताया है, बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो ही फिर बहुत काल से अलग रहती हो फिर अभी इस समय बाप के पास आई हो, फिर से अपना राजयोग सीखने। ये टीचर शिव बाबा टीचर है, परंतु बाबा कहते कैसा टीचर है, ये टीचर तुम्हारा सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। अब स्टूडेंट कहाँ भी टीचर को पकड़ेंगे, रास्ते में भी कहेंगे सर ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है, तो टीचर थोड़ी मना करेगा। वो हर समय स्टूडेंट की तो बातें सुनता है, समस्याएं सुनता है। टीचर हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। बाप भी कहते हैं मैं भी सब बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाबा हम सबका ओबीडियंट सर्वेंट है, आज्ञाकारी सर्वेंट कहो, आज्ञाकारी बाप कहो है। तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो, अधिकार से बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अब सब है भक्तियां, कहते हैं हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। अब पावन दुनिया तो स्वर्ग को, पतित दुनिया नरक को कहा जाता है। अब ये सब समझने की बातें हैं। ये कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है, क्या है लक्ष्य इस यूनिवर्सिटी का, मनुष्य से देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं कि हमको ये बनना है ना, सबको निश्चय है ना हमको ये देवता बनना है। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वो स्कूल में बैठेगा क्या? अब कोई जाकर के मेडिकल कॉलेज में बैठ जाए बस सुने, अब उसको कोई डॉक्टर बनना नहीं है तो कितना समय बैठेगा, बोर हो जाएगा। उसको निश्चय ही नहीं है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर थोड़े दिन बैठेगा चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं जिसको निश्चय ही नहीं होगा वो स्कूल में बैठेगा क्या? तो एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना कि मुझे बनना है, तभी तो बैठे हैं, रोज क्लास में आते हैं। हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे ये निश्चय होता है तब तो पढ़ते है ना, निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है कि हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं, ये सच्ची सच्ची नर से नारायण सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। वास्तव में ये पढ़ाई है, पढ़ाई है तो फिर बाबा पढ़ाई को कथा क्यों कहते हैं? तो बाबा कहते हैं वास्तव में तो ये पढ़ाई है, परंतु इनको कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी। कथा क्या होती है? लॉन्ग लॉन्ग अगो कहानी होती है ना, तो बहुत पहले की बात है। ये राजा रानी होके गए तो कहानी के रूप में सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी जो बाबा सुनाते कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी ये सुनी थी, तो पास्ट हो गई। पास्ट को कथा कहा जाता है, बहुत समय पहले की बात है, कहानी शुरू करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो पास्ट हो गया फिर उसको कथा कहा जाता है। अब ये है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं हैं और पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण है वो मनुष्यों में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है क्योंकि दैवी गुण है। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, फिर अपने को कहते हैं हम पापी नीच हैं। मनुष्य ही कहते हैं ना, देवताओं को तो नहीं कहेंगे, देवताएं तो नहीं कहेंगे कि हम नीच पापी है। मनुष्य ही है जो देवताओं को कहते हैं कि हम नीच पापी है। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में तो हो न सके, परंतु आजकल तो कलयुग में कोई देवताएं नहीं है, परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं ना। श्रेष्ठ देवताएं सतयुग में थे, इस समय कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, तो कोई भी श्री कहने का हकदार नहीं है। बाबा कहते हैं इस समय तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो, तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इन सब से वैराग्य है। सबको वैराग्य है ना इस पुरानी दुनिया से, या थोड़ी थोड़ी खींच होती है, जाए दुनिया को देखे, दुनिया में घूमे। हाँ बाबा कहते नहीं, इन सब से वैराग्य है। वो तो है हठ योगी सन्यासी, घर बार छोड़ निकले फिर आकर के महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर तो कोई खर्चा थोड़ी लगता है। अगर सन्यासी माना कुटियाओं में रहना, पहले तो यहाँ पर बहुत गुफाएं थी ना, अभी भी गुफाएं हैं, खाली पड़ी है, लेकिन पहले ये सन्यासिया के यहाँ गुफाओं में ही रहते थे, तपस्या करते थे। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है, कुछ भी नहीं। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, न कि महलों में। एकांत चाहिए तो कुटिया में बैठना होता है, न कि महलों में। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है ना, अभी तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद तो परमानेंट बनाइए, नहीं तो बाबा साकार में तो सस्ती क्या, मुफ्त में ही बनाते थे, क्योंकि माउंट आबू में तो कितने ये झाड़ है ना, ये सारे खजूर के झाड़, और सब जंगली है, तो उनके जो पत्ते, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो बाबा हर साल उनसे बनवाते थे कुटिया। देखी होगी पुरानी कुटिया का फोटो, तो वो सब बनवाते थे बाबा, और उसी कुटिया में बैठते थे मुफ्त में, बस वो झाड़ के पत्ते लाए और कुटिया बना ली। तो बाबा कहते हैं बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, कुटिया में सब सुख है। बाबा को बहुत अच्छा लगता था, दिन में 11 बजे के लगभग बाबा की कुटिया में बैठते थे, एक दो घंटा हाँ बाबा बैठते थे। कुटिया में सब सुख है, अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, इसलिए किसको भी ऐसी राय नहीं देनी चाहिए कि भक्ति छोड़ो, सब कल्प पहले जो हुआ था वही रिपीट होगा, इसीलिए किसी को नहीं बोलो भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा हैं, हमको अब तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। ज्ञान आएगा तब समझेंगे। बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती है। तो बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नवधा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं, बिना नागा मंदिर जरूर जाएंगे, नियम होता है उनका कुछ भी हो जाए जरूर मंदिर जाएंगे, रोज जाकर दर्शन करते हैं, देहधारियों के पास जाना, ये सब है जिस्मानी यात्रा। अब जहां भी जाएंगे जिस्मानी यात्राओं पर है तो देवी देवताओं के ही चित्र, नत्थु बाबा कहते हैं ये सब है जिस्मानी यात्रा। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, अब यहाँ तो कुछ भी धक्का नहीं खाना है। आते हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है, बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठने जाना है। भक्ति मार्ग में कोई श्री कृष्ण का भक्त होगा तो ऐसे नहीं चलते फिरते श्री कृष्ण को याद नहीं कर सकेगा, करेगा ना, चलते फिरते भी श्री कृष्ण को याद करेगा, वो श्री कृष्ण का भक्त है। तो भक्ति श्री कृष्ण को याद नहीं करता है ऐसे बात नहीं है, इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं ना, समझो उनकी पत्नी रोज श्री कृष्ण के मंदिर में जाती है सवेरे सवेरे, अब पति तो पढ़ा लिखा है बड़ा ऑफिसर है, पत्नी तो भक्तिन है, जैसे वो कहेगा रोज क्यों जाती हो तुम, घर में भी तो श्री कृष्ण का फोटो है, तुम यही पूजा करो, हाँ कहेगा वो। तो इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं वो कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में रखा है फिर तो मंदिर में क्यों जाती हो, श्री कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम कहाँ भी करो। अच्छा फिर बाबा कहते हैं अच्छा चित्र न भी रखो तो भी याद कर सकते हो, एक बार चित्र देख लिया तो क्या याद नहीं रहती है ना, कई बार होता है ना, अब वो कुमार कुमारी को मिलाते नहीं है केवल, अभी उनका विवाह करना है तो फोटो दिखा देंगे बस, मिलाते नहीं है तो फोटो भी देख लिया तो भी उसको याद तो रहेगा ना, सोचिए कि उसका वो सामने होगा तभी याद करेगी वो। तो बाबा कहते हैं अच्छा चित्र न रखो, याद तो फिर भी करते रहो, एक बार चीज देखी तो फिर वो याद रहती है ना, तुमको भी यही कहते हैं। तो बाबा तुमको भी यही कहते हैं, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो क्या, ये तो है नई बात। अब नई बात है शिव बाबा को घर में भी याद कर सकते, लेकिन पढ़ाई है स्कूल है तो पढ़ने के लिए तो स्कूल जाना पड़ेगा, घर में तो नहीं बैठ के पढ़ेंगे, ये तो है नई बात। शिव बाबा को तो कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं है शिव बाबा के, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी है तो नाम रूप देश काल जैसे कुछ है ही नहीं, आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जा सकता है ना, आत्मा को बाप की याद रहती है, आत्मा को बाप की याद रहती है। हाँ आती है ना याद की याद, हाँ बाबा मीठे बाबा हम बुलाते हैं तो आत्मा को बाप की याद रहती है, परंतु बाप को जानते नहीं तो समझाना पड़े सात रोज, वो भी भगवान को याद करते पर जानते नहीं, इसलिए सात रोज उनको समझाना पड़े कि परमात्मा कौन है। फिर रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती है ना, कही आते न कहते बस मुझे राजयोग सिखाओ, हाँ 10 मिनट का टाइम है मुझे राजयोग सिखाओ, अब 10 मिनट में राजयोग क्या सीखेंगे, वो एक दो लाइन ही बोल सकते, अपने आप को आत्मा समझ, मुझे परमात्मा कहते याद करो। अब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो अब जब तक समझा नहीं कि वो भी कैसे करेंगे, तो 10 मिनट में या 5 मिनट में थोड़ी कोई राजयोग सिखा सकते, इसमें तो ज्ञान देना होता है ना। तो बाबा कहते परंतु बाप को जानते नहीं तो समझाना पड़े 7 रोज। फिर रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती है, कई छोटी छोटी बातें सुनानी पड़ती है। बाप ज्ञान का सागर है ना, कितने समय से तुम सुनते आए हो ये ज्ञान, क्योंकि नॉलेज है ना, ज्ञान तो भंडार है सागर की तरह है। तो तुम कितने समय से सुनते आए हो, समझते हो, हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। तो बाप कहते हैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाता हूँ रोज रोज। बाबा कोई न कोई ऐसी मुरली की पॉइंट होती है, वो गुह्य पॉइंट बाबा सुनाते हैं। मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। अब शुरू में तो मुरली की पोस्ट जब तक पहुंचे, कई बार स्ट्राइक हो जाती थी मुरली की, वो पोस्ट की स्ट्राइक, पोस्ट ऑफिस वाले स्ट्राइक कर लेते थे, तो कितने कितने दिनों तक मुरली नहीं आती थी। तो आत्माएं तो बाबा के बच्चे तो तड़पते थे, मुरली नहीं आई है, मुरली नहीं आई है। हाँ मुझे याद है दादी जी ने मुझे श्रीलंका भेजा, 82 की बात है। दादी ने श्रीलंका में भेजा, सेंटर खोलना था मद्रास या चेन्नई की मदद से रोजी बहन ने बुलाया। अब वहां पर गए, अभी पहली बार विदेश गए, 82 की बात है। तो जब ना विदेश में तो गए थे, लेकिन श्रीलंका पहली बार गए थे, तो मुरली नहीं मिली, मुरली नहीं मिली। कितने दिन हो गए, रोज पोस्ट बॉक्स देखते थे, मुरली आई, मुरली आई, मुरली आई, तो तड़पते थे। तो देखो बाबा कहते ना, आप लोगों में से भी कई होंगे जो तड़पते होंगे। अभी तो कितना सहज हो गया है, अपने मोबाइल में ही मुरली देख लेते हैं, परंतु उस समय तो सचमुच तड़पते थे। तो बाबा कहते हैं मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। बाप कहते हैं तुम बाप को तो याद करो, मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल तो भूल जाते हो। मुरली नहीं आई चिल्लाओ नहीं, तो पढ़ते भी हो फिर भी भूल जाते हो, तुम बाप को याद तो करो। तो पहले पहले तो ये याद करना है, मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिंदी हूँ, आत्मा को भी जानना है। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया, हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अब पतित अपवित्र बने हैं। पहले तुम पवित्र ग्रस्त धर्म में थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने। हाँ उनकी आत्मा जैसे द्वापर में आई लक्ष्मी नारायण की, तो दोनों ही अपवित्र बने। पहले तुम पवित्र ग्रस्त धर्म के थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने। फिर दोनों पवित्र होते हैं तो क्या अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया? अब ये भी प्रश्न है, अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया, क्या कहेंगे? अपवित्र से पवित्र तो अभी बन रही ना, अभी संगम पर बन रहे हैं, लेकिन जब सतयुग में जाएंगे तो वहां तो पवित्र जन्म लेंगे ना, योग बल की रचना होगी, अभी बन रहे हैं, फिर तो घर जाएंगे वापस, फिर पवित्र दुनिया में पवित्र रूप में आएंगे। तो क्या अपवित्र से पवित्र बनी या पवित्र जन्म लिया? तो बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने हो, पुजारी को अपवित्र और पूज्य को पवित्र कहेंगे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है, कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उनको राज्य मिला, ये तुम जानते हो और कोई जान ही नहीं सकते जब तक बाप आकर के न जानकारी दे। तुम्हारे पास भी आगे ये नॉलेज रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी, गोया नहीं थी नॉलेज, गोया क्या थे हम, बाबा कहते गोया नास्तिक थे। तो नास्तिक किसको कहेंगे, जिसके पास रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। गोया नास्तिक थे, नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हैं। अब तुम यहाँ आए हो ये देवता बनने, वहाँ कितने सुख होंगे। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं, प्रजा पिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे ना। क्रिमिनल दृष्टि जानी नहीं चाहिए, भाई बहन की आपस में कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जानी चाहिए। इसमें है मेहनत, आंखें बड़ी क्रिमिनल है, सब अंगों से क्रिमिनल है आंखें, सब अंगों से क्रिमिनल है आंखें। फटाफट हाथ को दृष्टि जा सकती है, आधा कल्प क्रिमिनल आधा कल्प सिविल रहती है। सतयुग में क्रिमिनल नहीं रहती है, आंखें क्रिमिनल है तो उनको कहा क्या कहा जाएगा। अगर कुदृष्टि जाती है, बुरी दृष्टि जाती है, तो बाबा उसको क्या टाइटल देते हैं, असुर, वो असुर कहलाता है। कुदृष्टि जाती है, क्रिमिनल आंखें क्रिमिनल है तो असुर कहलाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया में आता हूँ, जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। मनुष्य तो कहते हैं ये अपने को भगवान कहलाते हैं। अब ब्रह्मा बाबा के बारे में देखते थे ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर में, उसमें तो बाबा बैठे हैं, साकार ब्रह्मा बाबा बैठे हैं ब्रह्मा के रूप से। अब वो कहते ब्रह्मा तो चार मुखी ब्रह्मा है, दाढ़ी मूछ वाला है, ये है वो है। अब ये तो साधारण मनुष्य है, तो इसको आप लोग कैसे भगवान मानते हो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को भगवान ही मानते हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, मनुष्य तो कहते हैं ये अपने को भगवान कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको बताओ, देखो झाड़ में देखो ये कहाँ बैठा है, बैठा भी है और खड़ा भी है, कहाँ बैठा है कहाँ खड़ा है। झाड़ में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है ये। अब इसको कैसे भगवान कहेंगे, बिल्कुल तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, वही फिर तपस्या कर रहे हैं। अब भगवान थोड़ी तपस्या करेगा, वो तो परमात्मा है, वही फिर तपस्या कर रहे हैं। तो सतयुग से लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है, संबत भी इन लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो उसमें लिखो, क्या लिखो, लक्ष्मी नारायण के राज्य में कि 1250 वर्ष तक लक्ष्मी नारायण के का राज्य, फिर उसके बाद त्रेता। शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिया है, रात दिन का फर्क हो गया। ब्रह्मा की रात आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, ये बातें बाप ही समझाते हैं। फिर भी कहते हैं हाँ सब समझा करके, फिर बाबा क्या कहते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठ जाओ, हाँ कई कहते तपस्या करने आया हूँ तो भाई कितने दिन रहना है, अब यहीं बैठना अच्छा लगता है, यहीं रह जाऊं तपस्या करूं। बाबा कहते नहीं ऐसे नहीं, यहाँ बैठ जाओ। बाबा ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठ जाओ, सर्विसेबल बच्चों को तो बाबा बिठाएंगे भी नहीं। दादियां कहती थी, दादी प्रकाशमणि तो कितनी बार क्लास में कहती थी, बाबा तो मुझे मधुबन में कभी नहीं कहते थे कि रह जाओ, कभी नहीं कहते थे। बस मैं आई कहाँ से, बाबा कहेगा बच्ची यहाँ जाओ, बच्ची वहां जाओ, तो मैं बाबा को कहती थी बाबा मुझे दो दिन तो रहने दो मधुबन में। बाबा कहते नहीं, सर्विसेबल बच्चे यहाँ थोड़ी बैठेंगे, जाएंगे। तो तो जब लास्ट का जो 17 जनवरी को दादी को वापस जाना था मुंबई, वो तो मुंबई में रहती थी दादी, पार्टी लेकर आई थी, तो 17 तारीख को पार्टी के साथ वापस मुंबई जाना था, और बाबा ने दादी को रोक लिया। कभी नहीं बाबा दादी को रोकते थे, लेकिन उस दिन बाबा ने रोक दिया, बच्ची आप रुक जाओ थोड़े दिन, दीदी नहीं है तो आप रुक जाओ। दादी तो खुश हो गई, हाँ बाबा ने मुझे कहा रुक जाओ, तो देखो। परंतु उनको क्या पता था ड्रामा की भाभी, जो 18 तारीख को कैसे बाबा व्यक्त हुए। तो बाबा कहते हैं सो सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं, सेंटर्स म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं, कितनों को निमंत्रण बांटते हैं, आकर के गॉडली बर्थ राइट विश्व की बादशाही लो। तुम बाप के बच्चे हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ, एक ही दुनिया है जिनका चक्र फिरता रहता है, मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं, मत मतांतर किस कितनी है। अब इसको कहा जाता है बाबा जो हमें कहते हैं वो एक ही श्रीमत है, तो बाबा कहते हैं इसी को कहा जाता है अद्वैत मत। ये है अद्वैत मत, भक्ति मार्ग में अद्वैत मत किसको मानते, आत्मा सो परमात्मा, वो कहते अद्वैत मत, दोनों में कोई अंतर नहीं है अद्वैत। लेकिन बाबा श्रीमत एक की सुनते ही अद्वैत मत कहते हैं। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी ताल तालियां निकलती है, कितने धर्म फैल रहे हैं, पहले तो एक मत एक राज्य था, सारे विश्व पर इनका राज्य था, ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, हम ही सारे विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने हैं, अभी तुम काल पर जीत पाते हो, वहाँ कभी अकाली मृत्यु होती नहीं, यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाली मृत्यु होती रहती है, चारों तरफ मौत ही मौत है। कितने कड़े शब्द है, चारों तरफ अभी भी देखो रोज न्यूज आती, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, कहाँ बाढ़ आई, यहाँ भूकंप आया, क्या क्या, अभी भी यहाँ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चल ही रहा है सारे दुनिया में, चारों तरफ कुछ न कुछ। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाली मृत्यु होती रहती है, चारों तरफ मौत ही मौत है, वहाँ ऐसे नहीं होता सतयुग में, पूरी एज लाइफ चलती है, एकदम पूरी पीढ़ी, बाबा कहते हैं 150 साल एवरेज हरे की आयु। भारत में प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, 150 वर्ष एवरेज आयु थी, अभी तो कितनी आयु रहती है। ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं, सब योगेश्वर बैठे हैं, हाँ ईश्वर ने जो योग सिखाया वो योग करते हैं तो योगेश्वर है, वहां थोड़ी कहेंगे सतयुग में नहीं बनते योगेश्वर, बाबा कहते यहाँ संगम पर बनते हैं, वहां थोड़ी कहेंगे, इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राज योग सिखा रहे हैं, फिर राज राजेश्वर बनना है, अभी योगी अब योगेश्वर फिर राज राजेश्वर बनना है, अभी तुम ज्ञानेश्वर भी हो, ज्ञानेश्वर हो राज योगेश्वर हो फिर राजेश्वर, अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे, अभी ज्ञानेश्वर योगेश्वर हो फिर सतयुग में राजेश्वर राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है, सिविल शुद्ध पवित्र अब आप बनाने की मेहनत करनी है, बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते, अंदर में पक्का हो, क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है, बेहद का सन्यासी बनना है। बेहद का सन्यासी बनना है। वरदान, बाबा शब्द की स्मृति से क्या होगा? बाबा की स्मृति आई तो बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कई कारण बनते हैं, समस्याएं आती है, तो हम कारण नहीं सोचे पर निवारण सोचे। हाँ, बाबा बैठा है ऐसे कहा तो वो निवारण का पहला रूप बन जाएगा। तो बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो लेकिन बाबा कहा और अचल बने, ये बहुत चमत्कार का शब्द है, बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। और बाबा खुद कहते हैं, बच्चे मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। तो बाबा कहते, तो बस बाबा कहा चिंता मुक्त हो जाते हैं क्योंकि बाबा बैठा है। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां तो चींटी समान भी नहीं है, चींटी भी कुछ हाँ उनके समान भी नहीं है। समस्याएं ऐसी हो जाती है, सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, हाँ कैसे हुआ, क्या क्यों क्या कैसे में जाएंगे तो ये सोचेंगे तो वो परिस्थिति पहाड़ का रूप बन जाती है। तो ये सोचने की बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है, भल रूप सरकमस्टांस का हो, वो अच्छी परिस्थिति नहीं हुई उस समय कोई बात हुई तो भल रूप सरकमस्टांस का हो लेकिन समाई सेवा है, उस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। अव्यक्ति शारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ के अंतर्गत कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन कार्य करो। कर्मातीत बनना है तो उसके लिए क्या पहले हमारा अभ्यास हो, साक्षी बनकर हर कार्य करो। साक्षी अर्थात सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रह कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ, ये नशा रहे। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। कैसे बनेंगे कर्मातीत? कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा, विदेशी तो अब जा ही रहे हैं, बहुत थोड़े बच्चे हैं डबल विदेशी यहाँ। डबल फॉरेनर्स रेज योर हैंड। हाँ, वेरी फ्यू लेफ्ट एंड सम आर लीविंग टुडे, सम आर लीविंग टुमारो, सो देयर इज नो प्रोग्राम इन ज्ञान सरोवर। ओम शांति।
आप पिलाओगे पहले जैसे
ओम शांति। बाबा के बच्चे, कभी कभी बाबा के प्यार में इतने खो जाते हैं कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत चीजों का भी ध्यान कम रहता है। अभी एक टीचर बहन की हाथ की घड़ी पांडव भवन में चारों धाम की यात्रा करते हुए कहां उनके हाथ से छुट्टी है वो उसको मालूम नहीं है। यदि किसी को कोई घड़ी मिले तो मैं रिसेप्शन में दे सकते हैं। कभी कभी होता है घड़ी छूट जाती है, कभी पता नहीं पड़ता है क्योंकि ध्यान नहीं जाता है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। अगर किसी को कोई चीज मिलती है तो रिसेप्शन या टेलीफोन एक्सचेंज में दे देती हैं, तो वहां से अनाउंसमेंट करके उन्हें दी जाती है। और आज हम सब जानते हैं कि आज प्यारे प्यारे बाबा का दिन है, गुरुवार, अर्थात बाबा से मिलन मनाने का, बाबा से मीठी मीठी रू रुहान करने का। और बाबा तो पहले से ही वतन में बच्चों को बुला करके बच्चों को भरपूर करते हैं, और हम सब बाबा के बच्चे बहुत ही प्यार से बाबा के सामने बैठते, बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। बाबा हमेशा चाहते हैं कि केवल एक नहीं, सभी बच्चे बाबा के सामने बैठें और बाबा को भोग स्वीकार कराएं, और बाबा भी बच्चों को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराते हैं। तो अभी हम सब मिलकर के वतन में जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार करेंगे, और जिस किसी को मन में कोई भी संकल्प है बाबा के सामने रख करके हल्के हो जाना है। जब कभी हम बाबा को बोलते हैं बाबा फलाने बच्चे ने याद दी है, तो बाबा हमें कहते हैं कि मैंने तो पहले उसका रिटर्न दे दिया, तुम अभी याद दे रही हो, तो इसलिए बाबा आपके संकल्पों का, आपके प्यार का, आपके मिलन का पहले से ही बाबा रिटर्न देते हैं। और फिर बाबा कहते हैं ये बच्चे तो मेरे सामने है, और मेरे सामने होते हुए भी मुझे क्यों भूल जाते हैं, क्यों तीसरा व्यक्ति को बोलते हैं हमारी याद दो। तो बाबा को अच्छा नहीं लगता कि तीसरा व्यक्ति कहे बाबा इन्होंने याद दी है। बाबा कहते क्यों, वो मेरे पास वतन में आए, उनका जवाब मैं दूंगा। तो आज जिसको जो भी बात करनी है बाबा से, वतन में जाकर के बाबा से मिलेंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। अभी हम सब वतन में जाएंगे, जो वतन में जाएंगे भोग स्वीकार कराने के लिए वो हाथ खड़ा करें, सब जाएंगे हैं। और फिर भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो हम सुनेंगे, उसके बाद पांच लाइन में अमृत होगा, एक लाइन भाइयों की होगी, दूसरी लाइन यहाँ इस कैमरे के इस साइड में डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, सेकेंड लाइन फॉर नेक्टर दैट विल बी फ्रॉम ब्रदर साइड नियर द दिस कैमरा, एंड there will be a line of double forest sisters and brothers. Shiluban will give nectar to all the double foreign sisters and brothers, and baki sab teen line lagengi behno ki, un sabko amrit pilaya jayega. Hamare beech mein aaj Japan ki Rajni behan bhi baithi hain, aur aap sabko malum ho ki videshi season chal rahi hai, to Rajni behan aur pehle bhi Geeta behan Los Angeles ki ye sab behne aati hain. Rajni behan to aaj keval gurvar ke din aayi hain, fir baad mein aap sab se milne aur murli sunane ke liye bhi aayengi. Rajni behan aap haath to khada karo, sab taali bajao. Aur dusri baat, aap sabko malum ho ki Shanti Van mein 5 tarikh se भारत के विभिन्न राज्यों से हमारी जोन इंचार्जेस, सब जोन इंचार्जेस और सभी बहनें आ रही हैं, जो कि ज्ञान की रूह रूहान और कई कारोबार के लिए और सेवाओं की आपस में मीटिंग करते हैं. उसमें से सुनंदा बहन आप हाथ खड़ा करो. कोल्हापुर सब जोन पूना, कोल्हापुर सब जोन की पूना है. सुनंदा बहन हाथ खड़ा करो. कम से सुनंदा बहन पूना सब जोन कोल्हापुर, उनको बहुत पुरानी है, मधुबन से बहुत प्यार है. इसके साथ साथ जो भाई बहने शांतिवन से आए वो हाथ खड़ा करें. देखिए, इन सब का भी बाबा के घर में स्वागत है. हर समय आप सबको बताते हैं, फिर से बता रहे हैं कि जो भी शांतिवन से आए हैं सेवाधारी भाई बहने, सभी का ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, क्योंकि नीचे कुछ स्थान नहीं है, तो इस बात का सबको ध्यान देना है. और फिर से हम याद दिला रहे हैं कि अभी हम चलेंगे बाबा के पास वतन में, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, उसके बाद एक लाइन अमृत के लिए वहां होगी भाइयों की. सेकेंड लाइन दैट विल बी फॉर ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स फ्रॉम ब्रदर्स साइड, एंड शिलुवेन विल गिव नेक्टर टू ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स. बाकी तीन लाइनें बहनों की होंगी. अभी हम सभी बाबा के पास चलते हैं. ओम शांति. अच्छा, जिस बहन की घड़ी गुम हुई थी वह अभी टोली किचन में उनको मिल जाएगी, वहां पर है. Thank you.
तेरी याद का अमृत पी
पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
जो भी माताएं खड़े हो गए हैं आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी प्यारे बाबा का संदेश आदरणीय बहन जी के द्वारा हम सुनेंगे, उसके बाद आपको अमृत मिलेगा। बैठ जाइए आप लोग।
शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते क्या देखती हूँ, बाबा बहुत ही स्नेही और शक्तिशाली स्थिति के द्वारा खड़े हुए थे और बाबा के सामने बहुत सारे भाई बहने दिखाई दे रहे थे। बाबा अपनी स्नेह भरी और शक्ति भरी दृष्टि से सबको भरपूर कर रहे थे, लेकिन बाबा कुछ समय तक इतना दृष्टि के द्वारा हर एक को भरपूर कर रहे थे और कुछ बोले नहीं,
तो मैं बाबा को देख रही थी, बाबा ने लास्ट में एक शब्द कहा, सिद्धि स्वरूप बच्ची, सफलता संपन्न बच्चे। जैसे ही कहा तो सब बच्चे इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे और उनका स्वरूप भी पूरा बदला हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने हाथ से ऐसे कुछ दिया तो हर एक बच्चे के सामने एक बॉक्स आता था और बॉक्स को बाबा ने कहा खोलो और वो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था अंतर्मुखी भाव। तो बच्चे उस बॉक्स को लेकर के खोलने के लिए अपने स्टेज को वैसा बनाते हैं और वो बॉक्स खुलता है, फिर उस बॉक्स के अंदर एक बहुत सुंदर चमकता हुआ डायमंड दिखाई दे रहा था। चमकता हुआ डायमंड दिखाई दे रहा था तो बाबा ने कहा इसको ध्यान से देखो। तो वो बच्चे क्या करते थे, जैसा जिसका जो संकल्प था वैसा ही वो डायमंड, वो एक जादुई डायमंड की तरह था, जैसा जो संकल्प करते थे वैसा उससे लाइट निकलती है। कई बच्चे तो परेशान होकर के देख रहे थे, कई बच्चे ये सोच रहे थे बाबा ने कहा है कि सिद्धि स्वरूप बनना है, हम कैसे बनेंगे। कई अपनी परिस्थितियां को सोच रहे थे और बहुत कम बच्चे ऐसे थे जो अपने सोमान और राजाई संस्कार और वर्तमान समय जो वापसी प्राप्तियां हैं उसके बारे में सोच रहे थे। तो सब देख रहे हैं, जो सोच रहे थे क्या कैसा है, तो उनके सामने उस जादुई डायमंड से अलग अलग प्रकार के ऐसी छाया जैसी किरणें आती थी, उनको समझ ही नहीं आता था ये क्या हो रहा है। और जो अपनी सोच स्थिति के द्वारा उसको देख रहे थे उनके पास तो अनेक प्रकार की शक्तियां, अनेक प्रकार के खजाने और साथ साथ उनके सामने अनेक प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर फल दिखाई दे रहे थे, वो उन सबको एंजॉय कर रहे थे। तो बाबा ने कहा संगम युग का एक एक सेकंड वो डायमंड जैसा है और इस सेकंड की ऐसी वैल्यू है कि जैसा संकल्प करते हैं वैसा ही उसका वाइब्रेशन और वैसी ही स्थिति बनती है। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा जो है बच्चों के सिद्धि स्वरूप स्थिति का विशेष बच्चों को वरदान भी दे रहे हैं और वरदान के साथ साथ उस स्थिति में टिकने के लिए बाबा ने कहा बच्चों को अपनी आंतरिक स्थिति को पावरफुल बनाना है, क्योंकि अभी जो समय आ रहा है जैसा सोचते हैं वैसा ही समय रिवर्स होकर के उनके पास आएगा और जैसा सोचेंगे तो उसके सामने परिस्थितियां भी वैसी ही रिवर्स होकर के आ रही हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कई बच्चे पुरानी बातों को और कई बच्चे वर्तमान समय भी कई प्रकार के सोच और कई तरह के चिंतन में अपना टाइम लगा देते हैं और बाबा से जो प्राप्ति हो रही है बाबा सामने दे रहा है लेते हुए भी उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा भी समय है कि बाबा जो समय अनुसार इतना ज्यादा दे रहे हैं आगे चल करके वो नहीं मिलेगा,
अभी समय अनुसार जो मिल रहा है उस स्थिति में अपने को भरपूर करें और सदा यही लक्ष्य रखें कि मुझे सफलता मूर्त बनना है और सिद्धि स्वरूप बनकर के सारे विश्व को बाप की प्रत्यक्षता का अनुभव कराना है और बाबा के कार्य को अपने ऊपर लेकर के सबके सामने इस महान कार्य को संपन्न करना है। फिर बाबा ने क्या किया, सबको एक बहुत सुंदर छोटा सा ताज दिया। देखने में छोटा था तो, लेकिन जैसे बाबा ने दिया, जैसे बच्चे के जो संकल्प होता था कि मुझे ये कार्य करना है, वैसे वो ताज जो है उनके ऊपर फिट होता जाता था। कई सोचते थे ताज तो बहुत छोटा है, कैसे मेरे ऊपर फिट होगा। बाबा ने कहा चाहे छोटी जिम्मेवारी है, चाहे छोटा कार्य है सेवा का, कोई भी कार्य है उसकी दिल से प्यार से करते हैं तो जिम्मेवारी का ताज ऑटोमेटिकली मिलता है, और यही जिम्मेवारी का ताज भविष्य में राज तिलक और प्रत्यक्षता का ताज प्राप्त होगा। इसलिए बच्चे हर छोटे संकल्प को, हर छोटे कार्य को महान समझ करके करें तो उन्हें विशेष शक्तियां और बाबा का सहयोग और कई विशेष अनुभव होंगे जो कि लास्ट समय में उनको बहुत काम आएंगे और परिस्थितियों से भी सेफ रहेंगे और परेशानियों से को भी पार कर सकेंगे। तो फिर बाबा ने सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराने लगे। मैंने कहा नहीं बाबा, पहले मैं कराऊंगी। बाबा ने कहा कि आज बाबा ने बच्चों को वतन में निमंत्रण देख के बुलाया है तो बाबा भी कराएंगे, फिर मैं बाबा को खिलाऊं। तो बाबा ने सब बच्चों के सामने भोग रखा, खिलाया और सब खुशी में नाच रहे थे। फिर उसके बाद जिनके भोग थे बाबा को याद प्यार दिया, बाबा ने भी उनके रिटर्न में सबको याद प्यार दिया। ओम शांति।